Jayadvaita Chandra Jayadvaita Chandra Jayadvaita Chandra Jayadvaita Chandra Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda हमने सुना था श्री कृष्ण जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं या जो कृष्ण अपनी लीला वृंदावन की अप्रकट करके किस प्रकार से सोचते हैं कि मुझे पुनः लोगों का हित करने के लिए वापस जाना होगा और उनको उन्नत उज्ज्वल जो रस हैं जो ब्रज भक्ति हैं वो प्रदान करनी होगी और उसके लिए वो हरिनाम संकीर्तन देते हैं और साथ साथ ये भी सुना हमने कि किस प्रकार से अद्वैत आचार्य का जो पुकार है उसके कारण जो कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज ने भगवान श्री चैतन्य के ये बाह्य कारणों का वर्णन किया है और अंतरंग जो कारण हैं उनका वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज करते हैं। तो श्रील कृष्णदास कविराज भगवान श्री चैतन्य क्यों अवतरित हुए उसके बारे में बताते हैं। तो ये हमने जो सुना बाह्य कारण था इसको गौण कारण भी कहा जाता है, सेकेंडरी जो कारण है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए हम जो अंतरंग कारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रील कृष्णदास कविराज अंतरंग कारण के बारे में कहते हैं कि ये जो अंतरंग कारण है ये बड़ा रहस्यमय है और गूढ़ कारण है। वेद उपनिषद ये भी इसको नहीं जानते हैं। तो ये कहते हैं कि ये सबके लिए भी नहीं है, सब लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। इस अंतरंग कारण को वही लोग समझ पाएंगे। कृष्णदास कविराज कहते हैं, हृदय धरय जे चैतन्य नित्यानंद, जिस व्यक्ति की इच्छा है या जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को हृदय में धारण किया है, ये सब सिद्धांत पाई से ही पाई वे आनंद। ये अंतरंग कारण को सुनकर ये वही आनंद प्राप्त कर सकता है, सब लोग नहीं। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं एक कहने की बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, नान्यता ये जो अंतरंग कारण है ये विलीन हो जाएगा, क्या कहेंगे, अवेलेबल नहीं रहेगा। क्यों? कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो ये बहुत ही उन्नत भक्तों के लिए चर्चा है लेकिन कुछ ही चीज़ें हम सुनेंगे जिसमें हमारा प्यूरिफिकेशन होगा और साथ साथ हमें कृष्ण की महानता को समझेंगे और कृष्ण से भी और अधिक जो महानता है चैतन्य महाप्रभु की हमें जानने को मिलेगी कि वही कृष्ण से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, कि वही कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। नंद सुत बलि जारे भागवते गाय, कि भागवतम किसका गान करता है? नंद सुत का, नंद महाराज के जो पुत्र हैं कृष्ण, भागवत में उसका वर्णन है। हाँ, नंद सुत बलिचार्य भागवते गाय, वही सचिनंदन के रूप में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में आते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी वर्णन करते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जय सचि सुत हैलसे। ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज मीन्स वृंदावन या ब्रज मंडल, हाँ 84 को उसका जो धाम है भगवान का नित्य धाम, तो जो ब्रज मंडल है, ब्रजेंद्र नंदन जय सचि सुत हैलसे, जो ब्रजेंद्र नंदन ब्रज के जो राजा हैं, इंद्र हैं, ब्रज के इंद्र कौन है? इंद्र मीन्स राजा, इंद्र कौन है? तो नंद महाराज हैं। तो उस नंद महाराज के जो पुत्र हैं वो कौन है? कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैलसे, तो वही सची माता के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। और बलराम हैलो निताय, तो कृष्ण जब आते हैं तो साथ साथ अपने जो बड़े भाई हैं बलराम उनके साथ आते हैं। तो बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से वैष्णवगण इन सब चीजों का वर्णन करते हैं और कृष्णदास कविराज अंतरंग कारण का चर्चा करते हैं। तो उसमें वो कहते हैं एक श्लोक के द्वारा, उन्होंने कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के जो तीन अंतरंग कारण हैं उन्होंने एक श्लोक में ही बोला है। श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशो वानेव, स्वाध्यो इनाद्भुत मधुरिमा की दृशो वा मदीया, सौख्यम चाश मदनुभवात की दृशाम व्यक्ति लोभात, तद्भावार्य समझिनो सचि गर्भ सिंधु हरिंदु। तो ये चीज जानने के लिए, तो ये तीन चीजें बताते हैं जिनको हम अभी सुनेंगे, कि ये तीन चीजें कृष्ण जानना चाहते थे। तो कृष्ण वो तीन चीजें जानने के लिए सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सची माता के गर्भ का आश्रय लेते हैं और चैतन्य देव के रूप में वो इस जगत में अवतरित होते हैं। तो इस श्लोक के अंतिम लाइन में ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु के एक संगी जो जगन्नाथपुरी में उनके सेक्रेटरी थे जिनका नाम था स्वरूप दामोदर, निजी सेवक, निजी से संगी है स्वरूप दामोदर, जो महाप्रभु के नवदीप में मित्र थे, एक साथ ही पढ़ते थे। तो वो कहते हैं तद भावाढ्य समझनु सची गर्भ सिंधु हरिंदु। तो इसी श्लोक में वो कहते हैं, एक शब्द यूज करते हैं, सौख्यम चाश मद अनुभवात के दृशाम व्यक्ति लोभात। कृष्ण को क्या हो जाता है? लोभ हो जाता है। लोभ को क्या कहेंगे? ग्रीड, लालच, लालच। कृष्ण भी लालची बन जाते हैं, लोभ हो जाता है और उनको भी ग्रीड उनके हृदय में डेवलप होता है। तो क्योंकि ये जो ग्रीड हमारे हम में है, क्योंकि ये परम भगवान में भी है, जिनसे हमारे में भी वही गुण है, हम उनके अंश हैं, तो ये जो लोभ है कृष्ण में भी था या कृष्ण में भी उत्पन्न हुआ। लेकिन इस भौतिक जगत का जो लोभ है वो बड़ा डेंजर है, है ना। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि 16वें अध्याय में कहते हैं ना, काम क्रोध स्तास लोभ त्रिविधम नरक शेदम द्वारा नाशनात्मनः, कि ये जो तीन चीजें हैं ये क्या है? नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। तो इस भौतिक जगत का जो लोभ है वो बहुत ही कठिन है और भौतिक जगत में जो भी लोभी बना है उसने कष्ट प्राप्त किया है। आपने सुना होगा कि कैसे बंदर को पकड़ते हैं, बंदर को पकड़ा जाता है जंगल में, जब शिकारी जाते हैं उसको पकड़ने, तो जो नारियल होता है जिसका पानी पीते हैं, जो ड्राई नहीं हुआ है ऐसा नारियल, जिसको डाब कहते हैं बंगाली में, तो वो जो शिकारी हैं वो ले जाते हैं और केवल थोड़ा सा छेद करते हैं, पानी निकाल देते हैं उसमें से, और उसमें मूंगफली या केला डाल देते हैं और रखते हैं कई स्थानों में। तो जो क्या कहते हैं बंदर, हाँ जो आता है लोभ, किस चीज़ का लोभ, खाने का लोभ, तो उस लोभ से बंदर आके हाथ डालता है। अभी हाथ जाते समय तो इजी जाएगा क्योंकि कुछ नहीं हाथ में, लेकिन निकलते समय उसने जब वो मूंगफली पकड़ता है तो हाथ बड़ा हो जाता है, या फिर केला पकड़ लेता है, तो इतना लोभ कि वो निकल नहीं सकता केला, हाँ या फिर हाथ भर गया तो मूंगफली नहीं निकल सकती हाथ के साथ, तो इतना लोभ कि वो छोड़ता नहीं है, हाँ बंदर पागल हो जाता है उसके लिए। उसी समय शिकारी उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, नचाता है, हाँ? उससे उसके गले में चैन डाल के उसको नचाया जाता है। तो उसी प्रकार से हम यदि भौतिक जगत में लोभी बन जाते हैं भौतिक चीज़ों के लिए, तो ये जो भौतिक प्रकृति है वो हमें नचाती है, तीन गुण हमें नचाते हैं, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक के डुबाए। कैसे नचाते हैं, कभी ऊपर उठाते हैं स्वर्ग में जाओ देवता बनो, हाँ भोग करो, और फिर कभी नरक के डुबाए, कभी हमें नरक में भेज दिया जाता है, हाँ कभी राजा बना देता है ये तीन गुण, और कभी हमें भिखारी बना देते हैं, हम नाचने लगते हैं लोभ के कारण। तो इसी प्रकार से हाँ ये जो कृष्ण है उनको भी लोभ हुआ था, ग्रीड, कृष्ण भी लोभी बन गए थे। तो ये जो लोभ है भौतिक जगत का वो बड़ा कष्टदायक है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर प्रेमा भक्ति चंद्रिका में कहते हैं कि आप ये जो लोभ, हाँ लोभ को आप कृष्ण की सेवा में लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभ किस में होना चाहिए, साधु संगे हरि कथा, साधुओं का संग करने में और हरि कथा को सुनने में, कृष्ण के बारे में सुनने में, क्योंकि साधुओं का संग करना में साधु से कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करना, हाँ भक्ति के बारे में पूछना और कृष्ण के बारे में सुनना, यह है साधु संग। हाँ क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु संग बड़ा शक्तिशाली है, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, कि सारे शास्त्र साधु संग की, साधु संग का गुणगान करते हैं, और थोड़ा भी हमें साधु संग भगवान के महान भक्तों का एसोसिएशन क्षण भर भी मिल जाता है तो भी सर्व सिद्धि है, हाँ सारी सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है, मतलब इस जगत का जो भौतिक दुख है कष्ट है उनसे मुक्त हो जाते हैं और भगवान की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति चाहिए तो उसके लिए एक ही प्राइस है, एक ही आपको कीमत देनी पड़ेगी। हाँ एक कीमत क्या है, रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। हाँ आपको पता चला कि कृष्ण भक्ति कहाँ मिल रही है तो दौड़ो आप, हाँ जैसे आपको पता चलता है कि कृष्ण भक्ति यहाँ मिल रही है, हाँ तो दौड़ो वहाँ। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लवले मूल्य में कलम। उसके लिए मूल्य क्या है, क्या देना पड़ेगा आपको, लवलम, हाँ कृष्ण भक्ति के लिए लालसा चाहिए हमारे पास, ईगरनेस चाहिए, हाँ लवल्य चाहिए, तभी कृष्ण भक्ति मिलेगी। तत्र मूल्यम लवलम एकलम जन्म कोटि सुकृतीर्ण लभ्यते। तो ये मूल्य आएगा कैसे, हाँ ये जो लवल्य है, जो प्राइस है या प्राइस है, कीमत है भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ये लवल्य आएगा कैसे, हाँ तो लवल्य कैसे आता है, जिनके अंदर कृष्ण के लिए लवले हैं उनका एसोसिएशन, उनका संग हम करते हैं। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए हैं तो वहाँ थोड़ी किसी के हृदय में या किसी में कुछ ऐसा लवले था कृष्ण के लिए, लेकिन जैसे प्रभुपाद का संग किया, प्रभुपाद से सुना, उनके आदेशों का पालन किया, उनके शिष्यों ने वहाँ जो हिप्पीज थे शुरुआत के दिनों में, तो उनके हृदय में भी वो भी कृष्ण के लिए रोने लगे, कृष्ण के लिए, कृष्ण के पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने सारा न्यूयॉर्क में रहने के बाद या अमेरिका में जो सारी भौतिक सुख सुविधाएं उनके पास थे वो सारे उन्होंने छोड़ दे, हाँ, और वो सब कृष्ण के लिए, कृष्ण के पीछे दौड़ने लगे। मतलब भारत आए, भक्ति का पालन करने लगे, शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, सेवाएं करने लगे। तो ये किसका चिन्ह है, लक्षण है कि लवल्य का। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि आध्यात्मिक जो लवल्य है या लालसा है, ग्रेड हमारे पास होना चाहिए, अब वो मूल्य है कृष्ण भक्ति के लिए, तभी कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। तो भक्ति का अधिकार क्या है, श्रद्धा। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो भक्ति के लिए श्रद्धा अधिकार, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति के लिए अधिकार क्या है, श्रद्धा। तो श्रद्धा हमारी डेवलप होती है, विकसित होती है, हाँ, जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं और उनके निर्देशों का पालन करते हैं, उनके आज्ञा के अनुसार कृष्ण भावना का अभ्यास करते हैं, तो श्रद्धा हमारी और दृढ़ होती है भक्तों के संग से। बहुत सरल है, श्रद्धा को और स्ट्रांग, मजबूत बनाना है। जैसे शराबी की श्रद्धा होती है शराब पीने में, वो क्योंकि और दृढ़ हो जाते हैं। पहले जब कोई नया नया शराब पीना शुरू करता है तो उसकी इतनी स्ट्रांग डिजायर, श्रद्धा नहीं होती, लेकिन वो और शराबियों का संग करेगा, उनमें उनकी मित्रता बनाएगा, तो उसकी क्या है, दिन ब दिन वो मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी बनता है। हाँ, शराब के अलग अलग धरातल पर जाता है, पहले चलते हुए हिलता डुलता है, लेकिन और उन्नत अवस्था में जो गंदगी, क्या कहते हैं उसको, जहाँ नाला होता है उसमें गिरता है, उन्नत अवस्था है शराबी की। ये क्या है, संग। हाँ, उसकी श्रद्धा और विकसित हो गई, हाँ, क्योंकि उसको लगा और आनंद मिल रहा है। तो वैसे ही हमें श्रद्धा को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, भक्तों का संग, और भक्तों का संग भगवान के जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा किया जा सकता है, भगवान के बारे में सुनने से किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों से हमारी जो श्रद्धा है वो विकसित होती है, और श्रद्धा के साथ साथ फिर हमारे अंदर ये जो ग्रेड है कृष्ण प्राप्ति के लिए, हाँ, ये बढ़ता है, ये और तीव्र हो जाता है। तो ऐसा ही, ऐसी जो लालसा है, ग्रेड है, भगवान के अंदर भी आ गई। तो श्रीमद् भागवतम में तीन जो भगवान के अलग अलग अवतार हैं उनके लालसा को बताया गया है कि कैसे इस इनकार्नेशन के अंदर एक ग्रेड डेवलप हुआ, तो उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने दूसरा ये ले लिया, उसकी पूर्ति करने के लिए दूसरा, फिर अंतिम में कृष्ण में भी कुछ और लालसा आ गई, इसलिए वो क्या बने, चैतन्य महाप्रभु। तो उसके बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान, हाँ, जो सबसे शक्तिशाली हैं, हाँ, षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण, कृष्ण छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कौन कौन से छह ऐश्वर्य हैं, यश, बल, धन, वैराग्य और ज्ञान, सुंदरता, षड ऐश्वर्य कृष्ण में है। तो ये जो छह ऐश्वर्य हैं से पूर्ण भगवान है, तो जो विष्णु है, भगवान का ही विस्तार कृष्ण का, हाँ, कृष्ण जब पालन करना होता है, कृष्ण को जब ऑफिस जाना होता है तो ये चतुर्भुज वेशभूषा धारण करके जाते हैं, है कि ना, वही कृष्ण है। विष्णु कौन है, कृष्ण से अभिन्न है, हाँ, लेकिन कृष्ण पूर्ण भगवान तभी होते हैं जब ये वृंदावन में होते हैं। हाँ, वृंदावन से जब उनको ऑफिस के लिए जाना होता है, हाँ, कुछ मैनेजमेंट करना है, पालन करना है, तो विष्णु का रूप धारण, जैसे कोई पुलिस है उसको जाना है तो वैसे थोड़े जाएगा घर के कपड़ों में, हाँ, जो उसको पुलिस के वेशभूषा धारण करके वो निकलता है ना, तो वैसे कृष्ण, हाँ, तो फिर वो पुलिस के वेशभूषा धारण करता है तो वहाँ उसके कोई संबंध नहीं होते हैं। कोई ट्रैफिक पुलिस है तो वहाँ उसकी वाइफ भी गाड़ी चलाते हुए रेड लाइट क्रॉस करेगी राधे गोविंद देव के, तो वो जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी वाइफ भी कार चलाते हुए उसके सामने रेड लाइट क्रॉस करेगी, तभी भी वो क्या करेगा वहाँ, वो मतलब ईमानदार है तो चलान उसके नाम से या लिखेगा, हाँ, तो वहाँ कोई संबंध नहीं, हाँ, रिलेशनशिप्स नहीं, लिमिटेड संबंध, हाँ, ऑफिशियल संबंध होते हैं। तो वैसे ही कृष्ण जब अपने ऑफिस जाते हैं तो विष्णु का वेशभूषा धारण करते हैं, हाँ, पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, तो वो वृंदावन में है द्विभुज कृष्ण, तो वो जब ऑफिस जाते हैं तो क्या करते हैं, और दो एक्स्ट्रा भुजाएं धारण करते हैं, ऑफिस का काम इतना है, पालन करना होता है उनको, तो इसलिए है, लेकिन है कृष्ण। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इन सब चीज़ों का, ब्रह्मा की प्रार्थना भी बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी का जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कृष्ण थोड़ी भगवान है, ये बच्चा क्या कर रहा है वृंदावन में, हाँ, सब इसका गुणगान गाते गा रहे हैं, चेक करता भी भगवान है क्या, उसके बछड़ों को चोरी कर देता हूँ। तो उसके बछड़ों की चोरी करके एक साल तक, अभी ब्रह्मा का एक क्षण हमारे लिए एक साल है तो कुछ क्षण के लिए उसने बछड़ों को और उनके फ्रेंड्स को साइड में लेके रखा। तो कृष्ण, तो ब्रह्मा ने ये गलती की थी, हाँ, तो कृष्ण बड़े उनके ऊपर गुस्सा थे, हम क्रोधित हो गए थे। तो ब्रह्मा जब आते हैं उनके पास एक चीज के लिए, क्षमा याचना करने के लिए, तो कहते हैं कि आप मेरे पिता हैं, कृष्ण को कह रहे हैं। अभी कृष्ण तो बहुत छोटे बालक है, तो सारे बच्चे बैठे थे वहाँ, और ब्रह्मा जी अपने से उनका वाहन पर आए थे, कौन सा वाहन है, हंस वाहन, हंस पर बैठकर आए हैं चार भुजा वाले। तो छोटे छोटे बच्चे जो थे कृष्ण के मित्रगण, तो कृष्ण भी बहुत छोटे बालक थे उस समय, पाँच छः साल के थे। तो जब आए तो सब बोलने लगे, ये बच्चों ने घर जाकर बाद में बताया कि एक चार सर वाला व्यक्ति आया था और इसका गुणगान कर रहा था सबको आश्चर्य लग रहा था। तो जब वहाँ के प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण आप मेरे पिता हो, तो कृष्ण कहते मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ कृष्ण भगवान परम भगवान है, अभी ब्रह्मा जानता है। वो कहते कि हे ब्रह्मा जी तुम किसके पुत्र हो, नारायण के, विष्णु के, जिनके नाभि से क्या निकला है, कमल लाल निकला है, कमल के ऊपर तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम मुझे पिता क्यों कह रहे हो, हाँ तुम्हारे पिता तो विष्णु हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वही कृष्ण है, लेकिन ऑफिस जाने के लिए क्या करते हैं, दूसरी वेशभूषा धारण करते हैं। तो ऐसे विष्णु या नारायण वैकुंठ में थे, तो वैकुंठ में उनके लिए तो सारे सेवकगण, हाँ, वहाँ तो सारे चतुर्भुज होते हैं, हाँ, भगवान भी चार भुजाओं और उनके यहाँ श्रीवत्स चिन्ह होता है, हाँ, और गुंजा माला वगैरह धारण करते हैं, और हर कोई उनकी सेवा में लगा हुआ है, हाँ, वहाँ वैकुंठ में, हाँ, जहाँ कोई कष्ट नहीं है। तो कई बार भगवान को भी लगता है कि क्या ये रोज रोज बड़ा मेरे साथ कोई मित्रता नहीं है, हाँ, जैसे कोई डिवोटी कह रहा था कि जो बिल क्लिंटन, कौन है जो सबसे धनी, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन पता नहीं कौन है, बिल गेट्स, हाँ तो वो भी इतना ऐश्वर्य है उसके पास, उसके लिए उसके एक कमी है उसके पास, एक मैगजीन कृष्ण कथामृत में लिखते हैं माधवानंद प्रभु, तो कहते हैं कि वो भी इतना ऐश्वर्य है, हाँ, सबसे धनी व्यक्ति है, लेकिन उसके पास कौन मित्र नहीं है कोई, हर कोई उसकी पूजा अर्चना में लगा हुआ है, उसका ही गुणगान गाता है, आप ही सबसे धनी हो, हाँ, मतलब वो हेल्थी रिलेशनशिप्स नहीं है, हाँ, फ्रेंडली, हाँ, आनंद जो होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप में वो नहीं है, तो बड़ा परेशान हो जाता है। तो वो भी कभी कभी सोचो उसके हृदय में भी लालसा होती है कि ये क्या है रोज रोज, हाँ, तो कहते हैं कि वो भी क्या करता है, रात को अपनी वेशभूषा चेंज करके और ऐसे किसी स्थान में जाता है जहाँ उसने मित्र बनाए हैं, और वहाँ उनसे जाकर बड़ा उसको आनंद का अनुभव होता है। तो ऐसा लोग भगवान विष्णु में भी आ जाता है, जब वो वैकुंठ में थे वहाँ देखते कि जब भी मैं लेटता हूँ लक्ष्मी तो मेरा चरण की सेवा करने में लगी रहती है, उठो तो सारे लोग चामर, हाँ, तो ये सब में लगे रहते हैं, कोई ना कोई प्रसाद, कोई प्रसाद नहीं भोगा ऑफरिंग करते रहता है कोई तांबूल दे रहा है, कोई फ्लावर्स, वो निकलते रास्ते में तो हर कोई उनके लिए स्त्रियां बाहर आ जाती है ना? और स्तुतियां करने लगती हैं, तो उनको लगता है ये तो इस प्रकार का रस तो वो अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी वैकुंठ में रहकर भगवान को एक लालसा, एक ग्रीड उनके हृदय में विकसित होता है। विष्णु वैकुंठ पति, क्या कि मुझे फाइट करनी है, क्या करना है, युद्ध करना, फाइट करने, बहुत दिन हो गया। वैकुंठ में तो कोई ऐसा है नहीं कि वहाँ कोई आसुर आया, वैकुंठ में आसुर नहीं है, कोई आ गया आसुर तो उनसे अभी फाइट करूँ या फिर नहीं, वहाँ तो भगवान बस आनंद में रहते हैं घर में ही धाम में। तो उनको लगा कि अभी मुझे फाइट करने, क्योंकि उनके अंदर ये गुण भी हैं, सबसे क्या है, बलवान है। हाँ, तो कभी कभी लगता है बल भी दिखाना चाहिए मुझे, इसका भी आनंद प्राप्त करना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें होती है व्यक्ति के पास, तो कभी कभी सब चीजों का वो आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान भी सोचते हैं कि अभी मुझे फाइट, जो युद्ध रस है, वीर रस का अनुभव करना है, वीर रस का आस्वादन। तो कहते हैं कि अभी बहुत शक्तिशाली है भगवान, सबसे शक्तिशाली, अभी उनसे फाइट करने वाला भी तो शक्तिशाली चाहिए। तो भगवान क्या करते, अपने ही दो द्वारपाल, वैकुंठ के जो दो द्वारपाल है, क्या है नाम उनका, जय और विजय को चुनते हैं और उनको भेजते हैं कि हे जय विजय, अभी आप चलिए, चलिए नीचे चलते जरा, वो पृथ्वी में चलते हैं। तो जय विजय तो वो अरेंजमेंट थी भगवान की कि चार कुमारों के द्वारा उनको श्राप मिलता है, तो भगवान वो जाते हैं नीचे, आते हैं आसुर बन के। आप पढ़ेंगे भागवतम में तो वर्णन आता है कि ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जो हिरण्याक्ष बड़े भाई और हिरण्यकशिपु छोटे, जय विजय भगवान के पार्षद, ये दो आसुर बन के आए थे। ये जन्म लेने से पहले ही पृथ्वी में इतना भयानक वातावरण हो गया था, जिसका वर्णन आता है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में डर उत्पन्न हो गया था। हिरण्यकशिपु और इनका जन्म होता है, ये बहुत भयानक आसुर होते हैं। तो भगवान विष्णु वीर रस का अनुभव करने के लिए आते हैं और इन दोनों के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। युद्ध करते हैं दोनों के साथ, एक को तो वराह रूप में मारते हैं। हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी को रसातल में ले गए थे, जल के अंदर। तो फिर वराह रूप में अवतरित होकर भगवान शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय देव को समित कर दिया, आपका रूप क्या है, शुकर रूप है। तो भगवान उनको ऊपर लेते हैं और उनसे फाइट करते हैं, हिरण्यक्ष को मारते, तो भगवान आनंद का अनुभव करते हैं। और फिर जो हिरण्यकश्यपु थे उनके लिए कृष्ण क्या करते, बड़ा सा रूप धारण करते हैं, कौन सा, हिरण्यकश्यपु। और फिर हिरण्यकश्यपु से तो बहुत भयानक फाइट होती है और फिर अंत में भगवान अपने गोद में लेते हैं और आराम से उनका ऑपरेशन करते हैं। बड़े सरलता से, उनको भी कोई कष्ट नहीं हो रहा था हिरण्यकश्यपु को। तो इस प्रकार से भगवान के अंदर ये जो ग्रेड है वो उत्पन्न हुआ था और इसकी पूर्ति भगवान ने इस प्रकार से की। तो जब ये नरसिंह रूप में अवतरित हुए और जब उनके हिरण्यकश्यपु को मार डाला, तो भगवान नरसिंहदेव नाचने लगे और अपना उग्र रूप प्रकट करने लगे, तो हर देवी देवता वगैरह डरने लगा। और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके आगे जाके नरसिंहदेव को शांत किया जाए। ब्रह्मा जी डर रहे थे, क्योंकि इन सबको डर था कि कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते थे ये देवता से, क्योंकि ब्रह्मा को तो विशेष गलती की थी उन्होंने। क्या गलती की थी, हिरण्यकश्यपु को वरदान दिया था कि आप थोड़ा ना जल में, ना थल में, ना आकाश में, ना यहाँ, ना वहां से कई सारे के नहीं मृत्यु होगा। तो ब्रह्मा को लगा भी मैं आगे जाऊंगा तो भगवान नरसिंहदेव मेरा भी ऑपरेशन ना करें, तो बहुत डरे थे। हर कोई देवता दूर था, इवन लक्ष्मी भी, लक्ष्मी नरसिम्हा है, तो फिर देखा कि एक ही व्यक्ति से शांत हो सकते हैं, वो कौन है? प्रहलाद महाराज के। तो प्रहलाद के द्वारा ही शांत हो सकते हैं। तो प्रहलाद को आगे करते कि प्रहलाद आप ही जाओ और इनको शांत करो। तो प्रहलाद जाते हैं, जाते बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को, और नरसिम्हदेव शांत हो जाते हैं। और शांत होकर फिर प्रहलाद से बड़ा प्रेम इनको उत्पन्न होता है नरसिम्हदेव को अपने भक्त के प्रति। इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भक्त वत्सलता के कारण भगवान क्या करते हैं, अर्जुन का रथ सारथी बन जाते हैं, पार्थ सारथी बनते हैं। तो ये वत्सलता का रस का अनुभव करते हैं। तो प्रहलाद को अपने गोद में बिठाते हैं नरसिम्हदेव, और भगवान नरसिम्हदेव देख रहे थे प्रहलाद को, तो इतना आनंद आ रहा था उनको, बहुत आनंद अनुभव कर रहे थे। हाँ, जैसे गृहस्थ जो व्यक्ति होते हैं, तो अपने पुत्र को जब गोद में लेता है, नन्ना मुन्ना बच्चा जो तोतली बोली बोलता है, और जब पिता उसको देखता है गोद में, बच्चा कभी कान खींच रहा है, कभी क्या कर रहा है, आनंद होता है कि नहीं पिता को? पिता को आनंद हृदय में महसूस होता है, जो पिता है उनको पता है कितना आनंद महसूस होता है। लेकिन बच्चे को भी आनंद होता है अपने पिता के गोद में बैठने का। तो नरसिम्हदेव ने यही देखा कि अरे मुझे तो बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन ये प्रहलाद को देखो, मुझसे ज्यादा आनंद इसको महसूस हो रहा है। प्रहलाद को महसूस हो रहा था मेरे पिता हैं नरसिम्हदेव, और भगवान अपने पुत्र के रूप में देख रहे थे। वत्सलता, जैसे माता पुत्र को देखती है या पिता पुत्र अपने पुत्र को देखता है, तो ऐसा रस का अनुभव कर रहे थे नरसिम्हदेव। तो नरसिम्हदेव को ये इच्छा हुई कि ये क्या है, मुझे ज्यादा आनंद होने वाला आनंद होना चाहिए, लेकिन कौन ज्यादा आनंद प्राप्त कर रहा है? प्रहलाद महाराज। ये प्रहलाद, तो वो सोचने लगे कि मेरे तो पिता माता होते तो उनके गोद में बैठता और मुझे भी ऐसा ही आनंद महसूस होता। तो नरसिम्हदेव ने देखा मेरे पिता माता क्या है, पिलर, खंबा है, अभी उनके गोद में कैसे बैठू? तो कहते थे नहीं, तब उनके हृदय में लालसा ग्रीड उत्पन्न हुआ, लोग नरसिम्हदेव, अभी मुझे क्या चाहिए, माता पिता चाहिए, पिता माता चाहिए। तब से भगवान ने निश्चय किया कि जो भी अवतार लूंगा बिना माता पिता के नहीं लूंगा, हर इसमें माता पिता चाहिए। तो भगवान का ये जो ग्रेड है, तो ये जो लालसा है नरसिम्हदेव की थी, तो उन्होंने इस प्रकार से पूर्ति की। तो फिर जब भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे, तो उस समय भगवान राम में भी उनका जब अवतरण हुआ था, तो दो उनको कमियां महसूस हुई कि अभी भी दो चीजें मुझे उनके हृदय में भी लालसा उत्पन्न हो गई, दो रसों की, एक था सख्य रस, फ्रेंडशिप। तभी भगवान राम के मित्र कौन थे? विभीषण और सुग्रीव। तो लेकिन मित्रता वो मित्रता नहीं थी जैसी वृंदावन में कृष्ण के साथ थी। कैसी है वृंदावन की मित्रता? तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, सखा शुद्ध सेव्य करे स्कंदे आरोहण। कहते हैं कि कृष्ण के जो सखा थे, कृष्ण के जो मित्र हैं, वो क्या करते हैं, उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, शुद्ध साख्य है, शुद्ध फ्रेंडशिप, कि करे स्कंदे आरोहण, कृष्ण के कंधे में चढ़ जाते थे उनके मित्र, कृष्ण के कंधे में बैठ जाते थे, वो नहीं देखते थे कि ये भगवान है या क्या है, ये मित्रता, ये प्रेम उनको था। और तुम्ही को ना बड़ा लोक तुम्ही आमासाम, और कहते थे तुम थोड़े बड़े हो, तुम थोड़े बड़ा कुछ हो, तुम और मैं तो एक ही हूँ, समान है, हम मित्र हैं। तो इस प्रकार से राम जी को अनुभव नहीं हो रहा था। अभी विभीषण आते तो वो आरती प्लेट लेके आते, सारी प्रार्थनाएं करते रहते थे, तो लेकिन मित्रता नहीं थी। अभी विभीषण थोड़े राम के कंधे में चढ़ के मित्रता दिखाएंगे, या फिर सुग्रीव थे, तो सुग्रीव भी ऐसे नहीं। तो जो शुद्ध मित्रता है, साख्य का अनुभव है, वो तो वृंदावन में है, जो कृष्ण अनुभव कर रहे थे। लेकिन कृष्ण वृंदावन से बाहर हस्तिनापुर अर्जुन के पास भी आते हैं तो अर्जुन भी डर जाता है। अर्जुन का फ्रेंडशिप भी वृंदावन के फ्रेंडशिप जैसा नहीं था। तो वो डर के भगवद गीता में प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, मैं तो आपको ऐसे समझ रहा था, आप मुझे क्षमा करिए। तो जब विश्वरूप दिखाया था भगवान ने, तो वो जो सख्य है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो आचार्यगण जो वैष्णव हैं वो वर्णन करते हैं कि दो प्रकार के जो सख्य होते हैं, एक है संभ्रम और विभ्रम। तो राम जी इस प्रकार का सख्य अनुभव करते थे, संभ्रम, कि वहाँ ऐसी मित्रता नहीं थी जैसे वृंदावन की है। तो उसी प्रकार से ये भी उनकी डिजायर, राम भगवान, जो भगवान राम के अवतार में थे, तो उनकी ये एक इच्छा रही, ये एक लालसा हुई कि मेरी मित्रता कैसे चाहिए, ये कुछ उचित नहीं है, ये फ्रेंडशिप, इसमें कुछ आनंद नहीं आ रहा है। थोड़ा आनंद है लेकिन ज़्यादा कुछ आनंद महसूस नहीं हो रहा है इस मित्रता में। और दूसरा, भगवान राम जब वनवास में थे, दंडकारण्य वगैरह ट्रैवल कर रहे थे, तो कई जैसे शूर्पणखा ने भी अप्रोच किया था कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। तो ये तीन जो अवतार हैं, या भगवान राम ने व्रत ले लिया था, एक पत्नी व्रत, कि एक पत्नी ही धारण करूँगा। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि वो मर्यादा का शिक्षा प्रदान करते हैं, एक मनुष्य के भांति नर लीला करते हैं और सारे जो संबंध हैं उनकी शिक्षा देते हैं कि भाई भाइयों का संबंध कैसे होना चाहिए, पिता और माता की ऑर्डर्स को कैसे पालन करना चाहिए, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें परफेक्टली राम सिखाते हैं। तो उस समय उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया था। तो भगवान उन्नत रस का अनुभव करना चाह रहे थे। कई सारे ऋषि मुनि चाह रहे थे कि भगवान हमें उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो उनको कहा भगवान राम ने कि मैं अभी एक पत्नी व्रत हूँ, आगे मैं अवतरित होऊंगा कृष्ण के फॉर्म में, तो आप गोपियों के रूप में अवतरित हो सकते हैं, या फिर जो द्वारका की 16,108 रानियां हैं उनमें आप आ सकते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में काफ़ी ऐसा वर्णन है, लेकिन हम बहुत शॉर्टकट चर्चा करेंगे। तो भगवान राम को भी ये लालसा हुई कि मुझे ये चीज़ें अनुभव करनी है, उनके अंदर भी एक ग्रेड उत्पन्न हुआ। तो फिर इसकी पूर्णता कब की उन्होंने, जब वो कृष्ण के रूप में, कृष्ण जब अपीयर हुए, तो कृष्ण लीला में भगवान ने ये जो सारी लालसा है या ये इच्छाएं हैं, ये जो लवले हैं, ये तीन ये जो लवले हैं इसको पूर्ति किया। कृष्ण लीला में जब भगवान आए तो उस समय उन्होंने शुद्ध सख्य का आस्वादन किया। उनके ऐसे मित्र थे जो उनके कंधे पे चढ़ते थे, और उनके एक ऐसी प्रियाएं थी जो क्या करते थे, उनको डांटते थे, प्रिया जदि मान करी करय भत्सन वेद स्तुति हरते हरे सही मोन मन। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं भगवान चैतन्य के अंतरंग कारणों का। तो उससे पहले हमने सुना कि किस प्रकार से ये जो ग्रेड हैं भगवान के अंदर डेवलप होते गए अलग अलग इनकार्नेशंस में। तो जब कृष्ण आए स्वयं, तो उस समय उनके अंदर भी ये ग्रेड जागृत हुआ, हाँ, ये इच्छा, ये लालसा जागृत हुई, एक लालसा। तो वो कैसे जागृत हुए? तो लोचनदास ठाकुर अपने चैतन्य मंगल में वर्णन करते हैं कि कब कृष्ण को लगा कि मुझे गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होना है, गौरांग का फॉर्म धारण करना है। हाँ, तो लोचनदास ठाकुर कहते हैं
कहे ब चैतन्य कथा सुन सावधाने अवतार कलियुगे हैल जे मने।
कहते कि आप सावधान होकर कृष्ण के बारे में सुनो कि किस प्रकार से कलियुग में चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो ये मुरारी गुप्त, हाँ, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा चैतन्य चरित महाकाव्य, तो नवदीप के और एक भक्त थे महाप्रभु के संगी, जिनका नाम था दामोदर पंडित। वो प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं? वो कहते हैं कि आपको पता है, हाँ, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे हैं, तो आप बताइए मुझे, क्योंकि मैं सुनूंगा तो मुझे बहुत आनंद का अनुभव होगा। वो पूछते प्रश्न केने श्याम वर्ण तेजी हैल गौर तनु, क्यों हाँ ये गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु या फिर जो कृष्ण है उन्होंने अपना श्याम वर्ण त्याग दिया और गोरा कलर उन्होंने क्यों धारण किया? ये पहला प्रश्न था उनका। दूसरा था केने वा कीर्तने लुटे गाय लय रेनु, क्यों ये कीर्तन में नाचते रहते हैं, क्यों हरि नाम का कीर्तन करते रहते हैं और अपने शरीर को रज या धूलि से अप्लावित कर देते हैं? केने वा नागर वेश छाड़े या संन्यास, इन्होंने क्यों नवदीप में अपना इतना सौंदर्यशाली रूप छोड़कर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया, क्या आवश्यकता थी? केने देशे देशे बुले पाई हताश, और क्यों देश देश उन्होंने भ्रमण किया? केने कांदे राधा राधा गोविंद बोलिया, क्यों ये गौरांग महाप्रभु राधा राधा या गोविंद कहे कहे के रोते हैं हर समय? चैतन्य महाप्रभु का देखा, हाँ, वो हर समय रोते रहते थे कृष्ण के विरह में। घरे घरे फिरे के न प्रेम जाचाइया, क्यों वो लोगों के घर घर जाकर सबको कृष्ण भक्ति दे रहे हैं? तो इस प्रकार से प्रश्न दामोदर पंडित ने पूछे थे मुरारी गुप्त को। तो मुरारी गुप्त कहते हैं कि एक समय था कि एक बार कलयुग जैसे ही शुरू हुआ था, द्वापर के एंड में, हाँ, कलयुग अभी शुरू ही होने वाला था, तो तभी नारद जी बड़े दुखी हो गए थे, हाँ, कलयुग के कुछ लक्षणों को देखकर। तो उन्होंने जब लक्षण देखे तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है, तो नारद जी को बहुत दया आई और उन्होंने सोचा कि सारे जो कलयुग के जीव हैं, हाँ, काल रूपी या कलयुग रूपी सर्प उनको निगल रहा है, ये लोग अधर्म के कार्य में अपने आप को प्रवृत्त कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब तक कृष्ण अवतरित नहीं होंगे, हाँ, स्वयं, और वो धर्म की स्थापना नहीं करेंगे, हाँ, तब तक ये संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को मानता हूँ, जदे कृष्ण दास मोई हय सर्वथाय कलित आने बतवे प्रभु जदुराय। कहते कि मैं यदि सही में मैं कृष्ण दास हूँ, नारद सोच रहे हैं ऐसी बात कि सही में मैं कृष्ण दास हूँ या कृष्ण का भक्त हूँ, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, कलयुग में जो यदुराय कृष्ण है, यदु वंश के जो किंग हैं, उनको मैं ले आऊँगा। हाँ, तो वो ये चर्चा कर रहे थे और बहुत दुखी हो गए थे नारद। तो उन्होंने देखा कलयुग की सिचुएशन को, तो फिर कलयुग जब शुरू हुआ था तो वो भ्रमण करते करते द्वारका में चले जाते हैं। तो उस समय कृष्ण द्वारका में थे और शाम के समय सत्यभामा के महल में थे, और कृष्ण ने कहा था कि सुबह मैं रुक्मिणी के पास चला जाऊंगा। तो कृष्ण रुक्मिणी के जब रुक्मिणी बहुत सारा अपने महल में अरेंजमेंट कर रही थी, स्वयं ही फर्श साफ कर रही थी, कृष्ण के लिए जल का पानी वगैरह सब चीज़ें दे रही थी, हाँ, सारी तैयारी कर रहे थे,
तो कृष्ण का आगमन होता है तो रुक्मिणी क्या करती है, भगवान को आसन में बिठाती है और जल वगैरह लेकर उनका सुवासित गंध जल प्रभु का छयानी पाद प्रक्षालन करे देवी श्री रुक्मिणी। तो सुवासित जल लाती है और कृष्ण के चरणों का पाद प्रक्षालन करती है, मतलब अभिषेक करती है, चरणाभिषेक। आपना संपद पद धरी निज बुके अनुरागे नाहरई क्षण देही बुके। तो फिर भगवान के चरण कमलों को हाथ में पकड़ती है और बार बार अपने छाती में लगाती है, हृदय में लगाती है और हृदय में स्मरण करते उन चरणों का। हृदय श्रीपाद धरी कांदये रुक्मिणी विस्मित हैया किछु पूछे चक्रपाणी। तो चक्रपाणी कृष्ण है। तो जब रुक्मिणी ने भगवान के चरण कमल अपने हाथ में पकड़े और पकड़ने मात्र से रुक्मिणी रोने लगी, इतनी अधिक रोने लगी कि अनकंट्रोल हो गया उसका रोना। हाँ, तो वो रोते ही रहे कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर। कांदना रहे तू किछु ना बुझे तुमार की लागी कांदह देवी कह समाचार। तो जब कृष्ण ने देखा कि आज क्या हो गया रुक्मिणी को, कभी रोई नहीं लेकिन आज क्यों रो रही है मेरे चरण कमलों को हाथ में पकड़कर, तो उस समय जो कृष्ण है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हाँ, कृष्ण आश्चर्यचकित होते कि क्या ऐसी घटना हुई, क्यों रुक्मिणी रो रही है। कांदना रहे तू किछु ना बुझे तुमार की लागी कांदह देवी कह समाचार। तो कृष्ण कहते हैं कि हे देवी तुम क्यों रो रही हो ये मैं नहीं जान पा रहा हूं, आप मुझे बताओ क्या कारण है तुम्हारे रोने का। तुम्हें प्राणाधिकम और जग जने जानी तुम्हारा अधिक के बा कहत आपने। तो कृष्ण कहने लगे कि सारा जगत जानता है कि तुम मेरी बहुत प्रिय रानी हो। हाँ, सारे रानियों में बहुत प्रिय रानी हूँ, सारा जगत जानता हूँ और तुम भी जानती हो कि मैं तुम मुझे कितने प्रिय हो। तो कृष्ण सोचने लगे कि क्यों आप रो रही हो, शायद मैंने तुम्हारे साथ परिहास किया था, मजाक किया था, शायद वो जो संवाद है परिहास का वो तुम्हें स्मरण हो आया हो इसलिए तुम अभी शायद रो रही हो। तो परिहास क्या किया था कृष्ण ने, एक दिन कृष्ण बैठे थे, कृष्णा बुक में आता है रुक्मिणी के साथ, तो जब कृष्ण बैठे थे तो उस समय कृष्ण ने कहा रुक्मिणी को कि रुक्मिणी देखो तुम तो फंस गए ऐसे व्यक्ति से शादी करके, मैं तो डरपोक व्यक्ति हूँ। हाँ, कृष्ण ऐसी चर्चा करने लगे कि देखो मथुरा से मैं डर के भागा, द्वारका में किला बनाया वहाँ रहने लगा। हाँ, और मैं तो ग्वाल बाल हूँ या ग्वाला हूँ जिसको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का, मुझे तो केवल यही पता है गाय और भैंस और बैल इनकी सेवा कैसे की जाए। तो इस प्रकार से काफ़ी कृष्ण ऐसे बता रहे थे तो रुक्मिणी बड़े दुखी हुई थी उस समय, उसको लगा कि अभी कृष्ण मुझे शायद छोड़ देंगे। हाँ, तो कृष्ण जैसे ये सुना तो रुक्मिणी बहुत भयभीत हो गई कि कृष्ण शायद मुझे अभी त्याग देंगे। तो ये सुनकर रुक्मिणी उस समय मूर्छित होकर गिर पड़ी थी। फिर कृष्ण ने उठाया, कहा कि मैंने तो परिहास किया था, कहते कि गृहस्थों के जीवन में यही तो आनंद है, कभी कभी यहाँ पत्नी से परिहास करें, चर्चा करें। कृष्ण कहते हम गृहस्थ हैं, कितना कष्ट उठाता हूँ मैं रोज, हाँ ये युद्ध करने जाना और मैनेज करना राज्य, कुछ तो आनंद नहीं मिलता, तुम्हारे साथ थोड़ी सी बातें करता हूँ तो यही थोड़ी आनंद देती है मुझे। तो कृष्ण इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। तो लेकिन रुक्मिणी ने कहा ये सब तो नहीं है, कहते कि मेरा हृदय तो, रुक्मिणी कहते कि मेरा हृदय बहुत कठिन है लेकिन आप मेरे प्राण नाथ हैं, मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। कहा कि हे कृष्ण आप भगवान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक चीज आप नहीं जानते। क्या चीज? कृष्ण को बड़ा
ये होता है कि ये कैसे संभव है, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, सारी चीजें जानता हूँ, भगवान ऐसी कोई चीज है जो नहीं जानते हैं इस जगत में? तो कृष्ण को शौक लगा हाँ वो सुनकर रुक्मिणी के वचन। रुक्मिणी ने कहा कि आप नहीं जानते कि आपके भक्त हाँ, आपके चरण कमलों के प्रति कितना उनका प्रेम है उनके हृदय में, हाँ ये आपको पता नहीं है। हाँ तो इस प्रकार से है, और रुक्मिणी के ये वाक्य सुनते तो कृष्ण अवाक हो जाते हैं। और तब रुक्मिणी कहती है कि ये तभी आपको पता चलेगा जब आप एक चीज करोगे। क्या करोगे? तो रुक्मिणी कृष्ण को डायरेक्ट कहती है कि आप नहीं जानते कि हाँ वृंदावन वासी और जो भक्त हैं हाँ उनका धन है आपके चरण कमल। हाँ इसलिए भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते सारंगानाम पदाम्बुजम। शुकदेव गोस्वामी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वेल्थ बताते हैं। तो कहते जो भक्त होते हैं उनके लिए धन संपदा है कृष्ण के जो दो चरण हैं। हाँ जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि मेरे लिए फेस्टिवल क्या है, मेरे लिए उत्सव क्या है, भगवान के विग्रहों का दर्शन करना मेरे नेत्रोत्सव कहते हैं। और कहते ब्राह्मण के लिए उत्सव क्या है, भोजन करना और दक्षिणा प्राप्त करना। तो चाणक्य पंडित ऐसा कहते हैं। तो वैसे ही रुक्मिणी कहती है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों के लिए चरण कमल सारंग आना पदाम्बुजम बहुत अधिक प्रिय है। और वो चरण कमलों को सेवा करके भक्तों को जो आनंद मिलता है, हे कृष्ण वो जो आनंद है वो आपको पता नहीं है। बेबी आप सर्वज्ञ हो सकते हैं, आप सारे जगत को जानते होंगे लेकिन इस चीज को नहीं जानते हैं। तो कृष्ण को शौक लगा। हाँ तो फिर कहते कि आप जानोगे कैसे? तो रुक्मिणी कहती है यदि राधा भाव हृदय कर आरोपन तबे से जानी बनी जो प्रेमेर लक्षण। यदि आप श्रीमती राधा रानी के मूड का अंगीकार करोगे तभी आप जान सकते हो कि भगवान का आपके प्रति, आपके चरण कमलों के प्रति भक्तों का प्रेम उनके हृदय में कितना होता है। कृष्ण ने तो आज तक ऐसी कोई चीज सुनी नहीं थी कृष्ण ने। हाँ कृष्ण को पहली बार कुछ ऐसे विशेष हाँ चीज सुनने को मिली तो कृष्ण की लालसा और बढ़ गई। हाँ क्योंकि सुनने से ईगरनेस बढ़ता है। जब रुक्मिणी ने कृष्ण के बारे में सुना जब वो छोटी बालिका थी अपने पिता भीष्मक के पास, विदर्भ राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी, तो नारद जी कभी कभी वृंदावन से आते थे राजा से मिलने के लिए। तो राजा पूछते थे कि भगवान कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण के कई लीलाओं का वर्णन नारद जी करते थे क्योंकि नारद जी का एक ही सेवा है। क्या है? नारद मुनि बाजाय बिना राधिका रमन नामे। नारद मुनि बिना बजाते रहते हैं और हर समय राधिका रमन नाम का उच्चारण करते हैं। जोर से बोलते हैं नारद मुनि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सुनने से इगरनेस लालसा बढ़ती है। तो जब रुक्मिणी ने सुना कृष्ण के बारे में तो उनको बहुत अनुराग हुआ, कृष्ण से ही मैं विवाह करूंगी। तो एक ब्राह्मण को भेजकर लेटर भेजा था। कृष्ण आया और शिशुपाल और इन सब राजाओं के चंगुल से उनको मुक्त कर दिया। तो वैसे प्रभुपाद एक छोटी सी कथा सुनाया करते थे कि एक भागवत कथा कर रहे थे एक साधु, तो उस कथा को सुनने के लिए एक चोर भी बैठे थे। तो चोर भी कृष्ण कथा सुन रहा था, तो वो जो साधु हैं कृष्ण के बारे में वर्णन कर रहे थे कि कृष्ण वृंदावन में कैसे हाँ कहाँ कहाँ घूमते हैं। फिर एक वर्णन किया कि कृष्ण की माता यशोदा ने उनको बहुत अलंकार पहनाती है और आभूषणों के साथ कृष्ण गौ बछड़े चराने जाते हैं। चोर को लगा ये अच्छा है, छोटा बच्चा है, ये अच्छा मौका है कि चोरी करने के लिए इजीली। तो वो सुनते गया कृष्ण के बारे में और उसके हृदय में लालसा उत्पन्न हुई चोर के कि मुझे वृंदावन जाना है। और वृंदावन जाकर वो जो छोटा बालक है हाँ उससे उसका आभूषण चोरी करूंगा मैं। तो वह दिल्ली से वृंदावन गया और गया तो देखा कृष्ण, हाँ कन्हैया जो छोटे थे, हाँ गव्य चराने गए थे, तो फिर वो गव्य चराते समय देखा कि कई सारे आभूषण कृष्ण ने धारण किए हैं। तो जैसे आभूषणों को कहा कि मुझे दे दो, तो कहते कृष्ण कहते नहीं, मेरी माँ डांटेगी मुझे। हाँ बाद में कृष्ण कहते ले लो, तो कहता नहीं नहीं वो खुद ही नहीं लेता। तो इस प्रकार से सुनने से जो लालसा है और बढ़ती है। तो यहाँ रुक्मिणी से कृष्ण ने पहली बार कोई चीज सुनी आज तक कि हाँ मेरे भक्तों को कितना उनके हृदय में आनंद और प्रेम होता है, हाँ भक्ति करने से उनके चरण कमलों के प्रति कृष्ण के। तो कृष्ण का जो लोभ है और बढ़ गया, कृष्ण की लालसा और बढ़ गई। तो कृष्ण कहने लगे, ए बोला सुनिया प्रभुर हैया चमत्कार, की बेले देवी कह आर बार। तो आश्चर्यचकित करके कृष्ण कहते कि और बोलो, हाँ इसके बारे में और सुनाओ मुझे, मैं चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। बाल मत ना सुनिला जे बोलिला तुम्हें, ऐसे न कि आछे जहाँ ना ही जाने आमी। तुमने जो बोला वो मैं ठीक ढंग से नहीं सुना है। कृष्ण कहते हैं क्या ऐसी कोई चीज है इस संसार में जो मैं नहीं जानता। तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि तीन जगतों में कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं जानता और तुम कह रही हो। हाँ तो कृष्ण को फिर महसूस होता है। तो रुक्मिणी भगवान के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करती हैं, आपके चरण कमल हाँ कितने शक्तिशाली हैं, कितने महान हैं, भक्तों के लिए कितने प्रिय हैं भगवान के चरण कमल। तो कृष्ण अपने ही चरण कमलों का ग्लोरी रुक्मिणी से सुनते हैं और तब हाँ कृष्ण के हृदय में जो लोभ है वो बढ़ता है। हाँ कृष्ण के हृदय में वो लोभ बढ़ता है कि मुझे भी हाँ उसका आस्वादन करना है। हाँ बल्कि कृष्ण लीला में भगवान ने सारे रसों का आस्वादन किया था, जो पांच रस है दिव्य रस, हाँ तो इससे परे कुछ रहा नहीं था। तो लेकिन कृष्ण लीला में भी भगवान के हृदय में एक और इच्छा प्रकट हुई, हाँ जिसका वर्णन कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु मेनली हाँ युग अवतार या युग धर्म स्थापन करना है उनका सेकेंडरी गौण कारण था। लेकिन मेन कारण क्या था कृष्ण का, तो तीन कारण बताते हैं कृष्णदास कविराज, हाँ जो स्वरूप दामोदर ने अपने डायरी में लिखा था। उस चीज का आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, हाँ जिसका वर्णन किया है। अतएव से भव अंगीकार करे साधिले न निज वांछा गौरांग श्री हरि, कि मेरी भक्ति करके भक्तों को क्या आनंद मिलता है ये जानने के लिए कृष्ण क्या बने, गौरांग महाप्रभु। हाँ ये इनका क्या आनंद मिलता है कृष्ण को भी पता नहीं है। हाँ तभी तो होगा, हाँ जब माता है, जो मदर होती है घर में कई व्यंजन बनाती हैं, लेकिन उसको सर्विंग करके बच्चों को या पति को भोजन सर्व करके जो आनंद मिलता है जो खाने वाले को नहीं पता चलेगा, है कि नहीं। हाँ उसके हृदय में, बल्कि स्त्री घर में सबसे आखिरी में भोजन लेती है ना, सबको बड़ा उसको इतना आनंद होता है, लेकिन जो खा रहे बच्चे पति उनको वो आनंद नहीं अनुभव करते। तो कभी कभी देख सकते हैं हाँ कई माताज होती है ना, मदर ने बच्चों को सर्व करके आनंद। वैसे ही कृष्ण को ये पता नहीं था कि मेरी भक्ति करके मेरे जो भक्त हैं उनको क्या आनंद मिलता है। वो आनंद जानने के लिए हाँ हाँ शादी लेना निज वांछा गौरांग श्री हरि, अतएव सही भाव अंगीकार करे। इसलिए जो कृष्ण है, कृष्ण जब कृष्ण लीला में ये उनकी लालसा बढ़ गई कि मुझे क्या करना है, क्या आनंद मिलता है वो जानना है भक्त का, तो इसलिए वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो जो कृष्ण तत्व है वही गौर तत्व है, लेकिन उसमें अंतर नहीं है। हाँ क्योंकि कृष्ण लीला में भगवान राधा कृष्ण के रूप में है, दो दो द्विधरी दो देह धारण करते हैं, शक्ति और शक्तिमान भगवान श्रीमती राधा रानी आह्लादनी शक्ति हैं। लेकिन वही कृष्ण क्या करते हैं कलियुगा में, से द्वि एक जबे चैतन्य गोसाई, वही दोनों क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। हाँ, तो श्रीमती राधा रानी चैतन्य या कृष्ण के हाँ उसमें अविष्ट हो जाती हैं। हाँ, तो दो जो रूप हैं राधा कृष्ण के, वो एक फॉर्म धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। रस आस्वादिते दो है हैल एक ठाए, तो ये दिव्य रस को अनुभव करना चाहते थे कि मेरे भक्तों को आनंद क्या मिलता है। जैसे कई बार होता है कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ये सब युवक अवस्था, युवा अवस्था में अभी तो ये जब इस्कॉन में देखते हैं कि कई लोग भक्त बन रहे हैं, ब्रह्मचारी बन रहे हैं, या फिर वो हरे कृष्ण महामंत्र जाप शुरू करते, तो माता पिता या फिर पड़ोसी और लोग सोचते कि इन लोगों को क्या आनंद मिलता है, हाँ ये क्या ऐसी चीज़ है, तो वो नहीं जान सकते दिव्य आनंद। तो जो आनंद भक्तों को प्राप्त होता है भक्ति करके, वो कृष्ण को भी पता नहीं था। तो वो जानने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं, हाँ श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, मूड है, हाँ वो धारण करते हैं। हाँ, और मूड धारण करने से अंग कांति अपने आप ही आ जाती है। हाँ, राधा भाव द्युति, तो जैसे मूड, मूड में जैसे मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मेरा कलर भी चेंज हो जाएगा बॉडी का। हाँ, आंखें लाल हो जाएंगी, है ना, हिलने लगेंगे हाथ पांव और जोर होने लगेगा। हाँ, तो चेंज हो जाएगा कलर भी। तो वैसे ही कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी का जो मूड है उसको धारण करते हैं, तो कृष्ण का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है और वो गौरांग महाप्रभु या गोरा हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम गौरांग है कि जिनका अंग कैसा है, गोरा है। हाँ, और श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है, गौरांगी, गौरांगी। हाँ, उनका जो अंग कांति है तपे हुए पिघले हुए सोने के जैसा है। तो जो कृष्ण लीला है और जो गौर लीला है उसमें कोई अंतर नहीं है, जैसे भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अभिन्नत्वात् नाम नामिना। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि अंतर है, क्या अंतर है कि भगवान का, भगवान से ज्यादा जो दयालु क्या है, भगवान का नाम है। वैसे ही कृष्ण लीला माधुर्यमय लीला है और गौर लीला क्या है, औदार्य, औदार्यमय लीला। तो वैष्णव वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार। तो श्री कृष्ण चैतन्य जो स्वयं कृष्ण है ब्रजेंद्र कुमार, तो औदार्यमय लीला और माधुर्यमय लीला है। तो औदार्य और माधुर्य में क्या अंतर है, औदार्य का मतलब होता है कि जैसे दयालुतों को देखना है, कृष्ण और महाप्रभु में अंतर क्या है, जैसे एक गिलास पानी है, तो कृष्ण के कार्यकलाप मतलब वैसे ही है जैसे कि भरा हुआ पानी है। हाँ, लेकिन जब पानी बाहर गिरने लगता है तो वो चैतन्य महाप्रभु की लीला है। हाँ, करुणा, करुणा और अधिक इजी हो जाते हैं, भगवान दया प्रदर्शित करते, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए कहा गया उनको परम करुणा पहु द्विजन निताई गौरचंद्र। तो ये जगत में सबसे जो दया दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु, इसी कारण। इसलिए रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने प्रार्थना की, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। हाँ, कि आप क्या है, सबसे ज्यादा वदान्या है, सबसे ज्यादा दयालु है, हे श्री कृष्ण चैतन्य। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है उनकी तीन इच्छाएं रह गए थे, जिनकी पूर्ति करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य देव के रूप में अवतरित होते हैं। पहले इच्छा क्या थी भगवान की, तो जैसे हमने भगवान के जो गौण कारण है वो भी तीन हमने सुने थे, तो अभी ये जो अंतरंग कारण है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, थोड़े समय के लिए हम सुनेंगे। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि पहला कारण है, हाँ, कृष्ण जानना चाहते थे क्या श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशो, हाँ, कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महानता क्या है, हाँ, श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है, हाँ, क्या है उनकी महानता। कृष्ण सोचते कि मैं तो सारे रसों का आनंद का आगार हूं, सच्चिदानंद कृष्ण को कहा जाता है, सच शाश्वत चित मीन्स ज्ञानमय, आनंद मीन्स पूर्ण आनमय आनंदमय, तो मैं सारे रसों का और आनंद का आगार हूं, सारा आनंद मुझसे ही जाता है, लेकिन पूर्णानंदमयामे चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमयामा कराये उन्मत्त। कि कहते कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम कितना विशेष है, हाँ, श्रीमती राधा रानी का प्रेम, हाँ, कितना शक्तिशाली है, हाँ, कि मैं नाचने लगता हूं उस प्रेम के कारण। तो कृष्ण ये सोचने लगते हैं, निज प्रेम स्वादे मोर हये जे आह्लाद, तहा हाते कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद। कहते कि मैं जितना मेरे भक्त के प्रति प्रेम प्रकट करता हूँ, लेकिन मैं मुझे जितना प्रेम में आनंद नहीं आता, मेरा भक्त बहुत अधिक आनंद अनुभव करता है मुझसे ज्यादा। हाँ, तो इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं कि वो आश्रय जातीय सुख पाएते मन धाय, मेरा मन अभी इसलिए भाग रहा है वो जो आनंद है वो प्राप्त करने के लिए। तो ये पहला कारण था कृष्ण का गौरांग महाप्रभु के रूप में आने के लिए, कि वो श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महानता को जानना चाहते थे। और दूसरा क्या था, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मधुरिमा की दृश्यो, हाँ, कि मेरे जो रूप की माधुरी है वो क्या है। हाँ, माधुरी मीन्स कृष्ण अपने ही सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, ये दूसरा कारण था कि कृष्ण अपने सौंदर्य को जानना चाह रहे थे, अपने सौंदर्य को देखना चाह रहे थे। हाँ, क्योंकि कृष्ण ने सुना था, यही एक सुनार लोभेर प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। तो एक बार कृष्ण ने क्या किया, द्वारका में कृष्ण थे, तो चिंतामणि से सारा बना हुआ है, तो वहां एक पिलर में कृष्ण जा रहे थे, पिलर में स्वयं को देखा, अचानक रुक गए, देखा कि ये कौन सुंदर पुरुष है। हाँ, कृष्ण देखकर रुक गए और देखते ही रह गए। हाँ, तो कृष्ण के हृदय में ये डिजायर हो गई। हाँ, जैसे कृष्ण जब ग्वाल सखाओं के साथ जाते थे, तो जब सखा अलग आगे चले जाते थे, तो कभी ये पानी में देख एक बार तो पानी में देखने लगे रास्ते में, तो खुद को ही देखा, तो उन्होंने कहा, उनके मित्रों को बुलाया, हे मधुमंगल, हाँ, हे श्रीदाम सुदाम, देखो देखो मेरे जैसा कोई आया है यहाँ, कितना सुंदर है। हाँ, तो कृष्ण देखते ही रह गए, फिर बाद में पता चला कि अरे ये मेरा ही रूप है। हाँ, तो इस प्रकार से कृष्ण के हृदय में ये दूसरा ये कारण था, जिसके कारण वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, ताकि इसका आस्वादन करने के लिए, कि मेरे जो रूप माधुरी है, हाँ, कि जो मेरा भक्त है वो खुद इतना आनंद अनुभव करते मुझे देखकर। हाँ, जब भगवान के भक्त भगवान को देखते हैं तो उनका आनंद बहुत अधिक हो जाता है, कोटि गुण बढ़ जाता है, लेकिन भगवान भी उस समय भक्त को देख रहे होते हैं। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे नहीं कि हम ही भगवान को देख रहे हैं, हाँ, भगवान भी क्या कर रहे थे उस समय, भक्त को देखते हैं। तो भक्त को देखकर यदि भक्त के हृदय में भगवान के प्रति बहुत अधिक प्रेम है, तो जो भक्त है बहुत अधिक आनंद अनुभव करेगा भगवान को देखकर, और भगवान भक्त को भी आनंद होता है भक्त को देखकर। तो जब इस प्रकार से आमने सामने होते हैं, तो कृष्ण ने देखा कि अरे श्रीमती राधा रानी और मेरे भक्त इतना आनंद अनुभव करते मेरे सौंदर्य को देखकर, हाँ, जो मैं नहीं अनुभव कर सकता। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे क्या करना होगा, मेरे सौंदर्य का, रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कृष्ण विचार करते हैं और तभी कृष्ण का ये डिजायर होती है, विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप है ते तबे मन धाय। इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ कि इसलिए मुझे श्रीमती राधा रानी का जो मूड है वो धारण करना होगा, तभी मैं इन चीजों को जान सकता हूँ या इसका आनंद आस्वादन कर सकता हूँ। तो कृष्ण का सौंदर्य कैसे है, हाँ, कृष्ण माधुर्य रेक स्वाभाविक बल, कृष्णादि नर नारी करे चंचल। कृष्ण के सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती। आजकल के मिस यूनिवर्स अब मिस हो जाएगी कृष्ण के सामने, हाँ, और अभी मिस्टर भी आ गया, तो लेकिन कृष्ण का सौंदर्य मिस एंड मिस्टर से क्या है, परे है। हाँ, कृष्ण इतने अधिक सौंदर्यशाली है, हाँ, हर कोई कृष्ण से आकर्षित होता है। इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित करते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को आकर्षित नहीं करते हैं, कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्वमान, अपना आस्वादिते कृष्ण करे न जतन। तो कृष्ण का जो सौंदर्य है, कोई व्यक्ति सौंदर्य के बारे में सुनता भी है या फिर कृष्ण को देखता भी है तो उसका मन आकर्षित हो जाता है कृष्ण की ओर। हाँ, कहते कि सारे जो नर नारी हैं कृष्ण को देखकर चंचल हो जाते हैं, इवन कृष्ण स्वयं चंचल हो जाते हैं अपने आप को देखकर, इतने कृष्ण सौंदर्यशाली हैं। हमारा सौंदर्य कुछ महीनों के लिए होगा, कुछ साल के लिए होगा, और हमें हर समय डिफरेंट क्या कहते हैं लोशंस और कलर्स क्रीम्स, सारे दुनिया कॉस्मेटिक्स, इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ता है अपने सौंदर्य को बनाए रखने के लिए। लेकिन कृष्ण कहते नहीं बना सकते, हाँ, बुढ़ापा आएगा सारा सौंदर्य खत्म। आज हीरो और कल जीरो, तो कृष्ण के साथ ऐसे नहीं है। कृष्ण हमेशा के लिए सौंदर्यशाली है, इतने अधिक सुंदर है, इतने सुंदर है कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपके हृदय में यदि प्रेम है किसके लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, हाँ, इन सब के लिए प्रेम है तो वृंदावन मत जाना। क्यों मत जाना, रूप गोस्वामी कहते हैं कि बड़ा डेंजर है वृंदावन जाना। वृंदावन गए तो यमुना के किनारे मत जाना, वहां भी गए तो लेकिन केशी घाट मत जाना, जहां भगवान ने केशी असुर का वध किया था। और केशी घाट में गए तो फिर वहां जो श्यामल वर्ण धारण किए हुए जो युवक त्रिभंग, तीन स्थानों में जो टेढ़े हैं, उनको मत देखना। उनको देखोगे तो क्या हो जाएगा, जितना प्रेम तुम्हारा इन सबके लिए है वो खत्म हो जाएगा, फिर कृष्ण के लिए प्रेम हो जाएगा, सबको भूल जाओगे। हाँ, तो ये सौंदर्य है कृष्ण का। तो ऐसे सौंदर्यशाली कृष्ण है कि उनके बाद का सौंदर्य को सुनते हैं, हाँ, या उनको देखते हैं, हाँ, तो हम, हाँ, उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण की भी यही इच्छा हुई कि मुझे अपने सौंदर्य का आस्वादन करना है। जैसे हमें अपना सौंदर्य देखना है तो आईने का सहारा लेना होगा, तो कृष्ण नहीं, उनको फिर आस्वादन नहीं कर सकते अपने सौंदर्य को। लेकिन जब दूसरा देखता है, हाँ, तो ज्यादा अनुभव करता है। तो इसलिए कृष्ण अपने रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, हाँ, कि मेरे सौंदर्य में कितना आनंद है वो जानने के लिए इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो जाते हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं। हाँ, तो ऐसे कई लीलाज हैं चैतन्य चरितामृत में,
यही माधुर्य अमृत पान सदा जय करे, तृष्णा शांति नहे तृष्णा बाढ़े निरंतरे।
तो कोई व्यक्ति कृष्ण के सौंदर्य का पान करता है, कृष्ण के सुंदरता को देखता है, तो उसकी जो तृष्णा है, उसकी जो प्यास है, वो कम नहीं होती है, वो क्या होती है, बढ़ती है। लोग कोई एक फिल्म देखते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी प्यास कम हो जाती है। फिर पूछते हैं कि अभी दूसरा फिल्म कौन सा आया है, वो सोचने लगते हैं नया फिल्म आया है क्या। तो इस प्रकार से कृष्ण के साथ ऐसे नहीं है। हाँ, कृष्ण के जो नाम है, भगवद गीता है, कृष्ण के जो गुण रूप लीलाएं हैं, वो हर समय नवीनतम है। जितना अधिक सुनो, जितना अधिक उनके बारे में पढ़ो, जितना अधिक कृष्ण के रूप को देखो, आप थकोगे नहीं, आपको लगेगा और देखना चाहिए। तो जितना अधिक हृदय शुद्ध होगा, उतने अधिक इच्छा बढ़ेगी कृष्ण को देखने के लिए। अतृप्त हैया करे विधि रनिंदन, अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। जो गोपिया वृंदावन में थी, वो ब्रह्मा को गाली देती थी। हाँ, कहते कि ये कैसे ब्रह्मा है, हाँ, कि इसके पास दिमाग ही नहीं है सृष्टि करने के लिए, क्यों गालियां दे रही है। क्योंकि तो इसने आंखें बना दी, सारा सृष्टि किसने किया है, ब्रह्मा जी ने। हाँ, सारा जो हमारा रूप रेखा भी उनके डिजाइन के अनुसार बना है। तो कहते कि इनके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, इन्होंने क्या गलत जो सृष्टि वो की है। क्योंकि इन्होंने आंखें बना दी, हाँ, लेकिन इसके ऊपर क्या बना दिया, पलके बना दी। क्योंकि हम जब कृष्ण को देखते हैं तो वृंदावन वासियों का, भक्तों का इतना महा प्रेम होता है भगवान को देखने के लिए, तो कोई बाधा नहीं आ जानी चाहिए। कहते ये पलके बाधा है, बीच बीच में क्या होती है, झपकती है। तो इस प्रकार से इतना अनुराग कृष्ण के सौंदर्य को देखने के लिए। तो इसलिए गोपिया कहती है, कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिला दुई, तहां से निमिष कृष्ण के देखी बमुई। कि हे कृष्ण, कोटि नेत्र नाही दिला सबे दिला दुई, हमें तो कितने नेत्र चाहिए, कितनी आंखें चाहिए, करोड़ों करोड़ों आंखें चाहिए कृष्ण को देखने के लिए, आपने तो केवल दो आंखें दी हैं, क्या देखेंगे कृष्ण को इससे। वर्णन आता है कि जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखती है, कृष्ण दूर से आ रहे हैं, तो कृष्ण जब दूर से आते हैं तो हम तो देखते ही नहीं कृष्ण को, हम देखते और चले जाते हैं। हाँ, देखते तो कृष्ण के दर्शन का मतलब होता है कि भगवान के हर एक अंग को देखा जाए और उनके रूप को, उनके वस्त्रों को देखा जाए, उनके आभूषणों को देखा जाए, भगवान ने क्या धारण किया है, कौन सा कलर है, कौन सी चीज कहाँ धारण की है, मुकुट धारण किया है या पगड़ी धारण की है, ये दर्शन है। हम दर्शन क्या करेंगे, दर्शन तो भक्त करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में क्या होता है, भगवान के लिए प्रेम होता है। हमारे हृदय में काम है, लस्ट है, तो हम नहीं कर सकते कृष्ण का दर्शन। तो जो गोपियां हैं वो कहते हैं कि केवल दो ही अपने दिए हैं हमें आंखें, कैसे हम कृष्ण को देखेंगे। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आर, जय जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। जो कृष्ण को देखता है वो कौन है, भाग्यवान है। कहते कि इन आंखों का कोई और प्रयोजन है ही नहीं, ये आंखें कुछ और देखने के लिए बनाई नहीं गई। ये संसार की कई चीजें हम देखते हैं तो ये आंखें कोई और चीजें बनाने देखने के लिए नहीं बनाई गई। ये आंखें क्या देखने के लिए बनाई गई है, कृष्ण को देखने के लिए। और उसी में ही ये जो आंखें हैं इनका इनकी सफलता है। तो इसलिए ये दूसरा अंतरंग कारण था कि कृष्ण क्यों अवतरित हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि कृष्ण अपने रूप की जो माधुरी है, अपने सौंदर्य का आस्वादन करना चाहते थे, और उनके हृदय में ये भावना आई कि मुझे श्रीमती राधा रानी के भाव को धारण करना होगा, मुझे श्रीमती राधा रानी का स्थान लेना होगा, तभी मैं ये जान सकता हूँ कि मेरा सौंदर्य क्या है और मेरी भक्ति करके भक्तों को क्या आनंद मिलता है। इस प्रकार से ये दूसरा कारण था। और जो तीसरा कारण था कि कितना अधिक हाँ इन दोनों चीजों को देखकर मुझसे प्रेम करके भक्त मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे सौंदर्य को देखकर कितना अधिक वो आस्वादन करते हैं, आनंद उठाते हैं, तो मैं भी वही आनंद उठाना चाहता हूँ, वही रिलिश करना चाहता हूँ भगवान के रूप को और उनके उनके प्रति जो भक्ति है। तो इसलिए जो कृष्ण है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो जाते हैं इस कलियुगा में, तो श्रील कृष्णदास कविराज बड़े ही अद्भुत और अच्छे ढंग से चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग और जो बहिरंग कारण है क्यों अपीयर हुए हैं, अवतरित हुए हैं, इसका वर्णन करते हैं। तो हमने चैतन्य महाप्रभु के इन अंतरंग और बहिरंग कारणों की चर्चा की है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित हो जाते हैं और सबको कृष्ण भक्ति का जो दान है वो करते हैं बहुत अधिक उदार होकर। तो आज के दिन हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए और उनकी जो सबसे मूल्यवान भेंट हमारे लिए क्या है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान अपने धाम से विशेष चीज हमारे लिए लाए, वो है प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। भगवान का जो नाम है और वो प्रेम धन का उच्चारण हमें अधिक से अधिक करना चाहिए और सुनना चाहिए और उसका उच्चारण करना चाहिए। और आज के दिन समय निकाल कर विशेष रूप से और आज हमें व्रत भी लेना चाहिए कि हे कृष्ण, कुछ वाव्स ले, व्रत ले कि आज से मैं और गंभीरता से भगवान के नामों का उच्चारण करूँगा। हाँ, जो भगवान इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, जो मेरे ऊपर करुणा प्रदान करने के लिए वह अवतरित हुए हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया जा सकता है जब हम मिलकर हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप वेस्ट बंगाल में 522 साल पहले अवतरित होते हैं, 22 साल पहले, 522 साल पूर्व वो वहाँ अवतरित होते हैं। तो जैसे कि हमने नवदीप की उस स्थिति का वर्णन किया था, तो उस समय उनकी मदर का नाम था सची माता, जो यशोदा से अभिन्न है, देवकी से अभिन्न है। उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र, जो कश्यप और वसुदेव और नंद महाराज से अभिन्न है। तो इनके द्वारा भगवान अपने आप को अवतरित करते हैं नवदीप में। और सची माता और जगन्नाथ मिश्र की 8 कन्याएं हुई थी। जैसे कृष्ण लीला में भी 7 पुत्र होते हैं ना, 7वीं कन्या होते हैं 8वें कृष्ण। तो यह 8 कन्याएं उत्पन्न होकर उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता भगवान से प्रार्थना करती है, तो तब एक पुत्र प्राप्त होता है विश्वरूप, जो बलराम है स्वयं। और फिर उनके बाद भगवान कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रवेश करते हैं और फिर उनके हृदय से सची माता के हृदय में प्रवेश करके फाल्गुन पूर्णिमा, जो आज का दिन है, आज के दिन अवतरित होते हैं और सारे जगत को कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। तो आज विशेष दिन है और आज के दिन हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा करने का, भगवान के बारे में सुनने का और भगवान के नामों का उच्चारण करने का। तो ऐसा करेंगे तो भगवान के प्रति जो हमारा अनुराग है वो और अधिक विकसित हो सकता है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की ये लीला है या ये कारण है। फिर आगे हम समय निकाल कर उनकी लीलाओं पर भी चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के गौर सुंदर श्री हरि के
सरस्वती की।